तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे मीठे मीठे बाबा के ये महावाक्य है कि जैसे अभी आप सभी को आवाज में आने में कोई कठिनाई नहीं होती है ना, बात जितना मर्जी भाषण करा लो, हमारी बहनें तो बहुत एक्सपर्ट है, कई प्रकार के कोर्सेज कराती है, टीवी में रोज आ रहा है, यानी आवाज में आना कोई डिफिकल्ट नहीं है। परंतु ऐसा भी समय आने वाला है आवाज में, यानी अभी आवाज से परे जाने में मेहनत है, परंतु ऐसा भी समय आने वाला है जब आवाज में आना डिफिकल्ट होगा। इतना आप ऊपर खिंचे हुए होंगे, जैसा अभी हम सब बैठे थे याद में, कितना आनंद मजा आ रहा था, खुशी हो रही थी, एकदम हल्के ऊपर उड़ रहे थे आप सभी। नीचे आना डिफिकल्ट था, यानी आवाज में आना में टाइम लगा। तो ऐसा हम बच्चों के लिए बाबा कहते ऐसे आएगा, सारी सेवा साइलेंस से ही होगी। तो ऐसा भी समय आ रहा है जब जो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए हैं वो सिद्ध होते जा रहे हैं। मुझे कहा गया कि आप अपने बाबा मम्मा के साथ के अनुभव सुनाओ, कुछ हम बताएं। हम जब इस ज्ञान में आए थे आज से 58 वर्ष पहले 1957 में, बाबा ने हमको अपना बनाया तो यही कहा था, जैसे अभी भी आज भी रोज मुरली में आता है बच्चे, समय बहुत कम है, बिना आज सामने खड़ा है, बहुत जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर लो, और मैं सब तुम सभी को साथ लेके जाऊंगा, पहले शांति धाम, फिर तुम बच्चों को वहां से सुख धाम भेज दूंगा। हमने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी समय आएगा कि हमको बाबा मम्मा के अनुभव सुनाने पड़ेंगे। हम बाबा के भोले बच्चे ये समझते थे कि बाबा जाएंगे हम साथ ही उड़ के जाएंगे, जैसे है ना गीता में है कि सभी आत्माएं मच्छरों माफिक जा रही है परम धाम को। तो हमने भी ये सोचा था कि बस अब विनाश सामने है, उस समय था भी, लगता भी था, ऐसे नहीं कि अब भी लगता है, अब तो और कंडीशंस बिगड़ती चली जा रही हैं, उस समय भी लगता था कि विनाश हुआ और कई प्रकार की समस्या उस वक्त थी, यानी दुनिया की कंडीशन भी ऐसी लग रही थी कि विनाश हुआ कि नहीं हुआ। 1857 था उस वक्त हम जब ज्ञान में आए, तो 1857 में क्या हुआ था, भारत की पहली लड़ाई हुई थी, कहते हर 100 साल बाद लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। तो हमने कहा अभी 1957 में ही महाविनाश होगा, विनाश होगा, हम बाबा के साथ जाएंगे, ऐसे ही वो उस वक्त कंडीशन थी, नहर स्वेज की, इजिप्ट की, इजराइल की, सब प्रकार के झगड़े थे। तो लेकिन हम बाबा को भी क्या, नहीं, दो चीजें क्या दिखाई दी, जब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए तो क्या देखा, दो मुख्य चीजें, एक तरफ विनाश देखा जबरदस्त, वार एटॉमिक वार देखी वो देखा, प्रकृति में प्रकृति दुख दे रही है, कैसे हाहाकार मचा हुआ है, खूनी नाक खेल देखा, बाबा ने साक्षात्कार किया। और दूसरी तरफ क्या देखा, नई दुनिया आएगी, बाबा कह रहे साक्षात्कार जो हुआ, ऊपर से सितारे आ रहे हैं और कोई प्रिंस बनता है, कोई प्रिंसेस बनता है, ये साक्षात्कार, यानी एक तरफ विनाश का और एक तरफ स्थापना का, दोनों साक्षात्कार। तो बाबा ने क्या किया उस वक्त, आपने वो हमारी किताबें छपी हुई हैं, बाबा की जीवन कहानी पार्ट 1 पार्ट 2, انگلش میں بھی ہیں, آپ میں سے کسی نے پڑھی بھی ہوں گی. تو بابا نے اس وقت کیا کیا, اور مرلی میں کچھ دن پہلے مرلی میں بھی آیا, جب مجھے یہ ساکھ, ہم کہتے ہیں ہم باپ سمان بنے اور جیسے بابا نے کہ ہم ویسے بنے, انبھو سنانے کا مطلب تو یہی ہے, جو بابا میں گن تھے جو بابا نے کیا ہم بچوں کو بھی ویسا کرنا چاہیے, تبھی تو باپ سمان بنیں گے. تو دیکھیے بابا نے کیا کیا, تب کچھ سمے مرلی میں بھی آیا تھا, پتا یاد ہے کسی کو؟ میں بتاتا ہوں. بابا نے کہا جب مجھے ساکھیاتکار ہوا, وناش بھی دیکھا اور استھاپنا بھی دیکھی, اور بابا نے کہا کہ تم کو یہ استھاپنا کا کاریہ کرنا ہے, کیا کیا؟ سب کچھ نچھاور کر دیا, تن تو دے دیا, شیو بابا اس میں پرویش کیا, پرنتو اپنا دھن, اپنی جائیداد, اپنا گھر, کچھ بھی جو کچھ بھی تھا سب ایشوری سیوا میں لگا دیا. اپنے کٹمبیوں کو بھی, جو اپنے ان کے لڑکے تھے یا بچیاں تھیں, سب کو گیان ملا ہے. کہا میں نے اپنے ویاپار چھوڑ دیا, اس کو کہا جو بھاگیدار کو جو دینا دے دو, ان کو وناش سامنے دیکھ رہا تھا کہ جلدی, یہ نہیں کہ برہما بابا کو یہ معلوم تھا کہ اتنا سمے لگے گا, اس وقت ان کو بھی معلوم نہیں تھا. ان کا راجے رجواڑے بھی چھوڑ دیے, ان سے تعلق بھی چھوڑ دیا, سارے پریوار کو گیان ملا ہے. سوچو اس وقت 1936-7 اتنا دکھ اشانتی نہیں تھی, میں سمجھتا ہوں ہم آج سے 50 سال پہلے بھی اتنا دکھ اشانتی نہیں جتنا ابھی ہے. تو کیا ان کو بھی گیان ملا ہے؟ سوچا نہیں کہ آگے کیا ہوگا, سب کو گیان سنایا اور سب کچھ تیار کر دیا, ایک جگ کی استھاپنا کر دی, ٹرسٹ بنا دیا. تو دیکھیے بابا نے کہا میں نے ایسے کیوں کیا, پرشن پوچھا ہے مرلی میں, بتاؤ بابا نے ایسے کیوں کیا, بتاؤ کوئی بتائے. یہ ایک سوچتا چلو میرا بزنس چلتا رہے اور اس سے پیسہ آتا رہے گا تو کام چلتا رہے گا, ہوتا نا کئی دفعہ کوئی فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں اس سے سینٹر چلتے رہتے ہیں, ایسے بھی ہے ہمارے, یا کچھ اپنا ریٹائرڈ ہوں گے فکس ڈپازٹ کر دیں گے, اب تو موج ہے جوگ لگاؤ کھاؤ پیو موج کرو, ایسے کہتے ہیں نا. تو بابا بھی ایسے اتنا بڑا بزنس تھا کر دیتا, اسے پیسے آتے رہتے یا چلتا رہتا, بابا نے ایسا نہیں کیا, سب کچھ نچھاور کر دیا, اس کے بعد اپنے ہاتھ میں کبھی پیسہ ہاتھ میں لیا نہیں. ہم نے دیکھا, ہم جب بھی آتے تھے دیں گے بابا کا کہ نہیں مما کو دو, ایشو کو دو, ایشو دادی کو, کبھی ہاتھ میں نہیں لیا. تو بابا نے کہا میں نے ایسے کیوں کیا, مرلی میں ہے آپ بتاؤ, اور وہ کامیاب ہے وہ, اس میں بتاؤ کیوں کیا. بابا نے یہ کہا ہے کہ میں چاہتا تھا مجھے انت میں کچھ بھی یاد نہ آئے, یہ ان کی ایم تھا. اگر میں اپنے پاس کچھ رکھوں گا تو کیا ہوگا, پھر یاد آئے گا. سب کچھ ایشوری سیوا میں لگا دیا, کتنی بڑی بات ہے بتاؤ, کتنی بڑی زبردست چیز ہے کہ گھر پریوار سب کچھ اس ایشوری سیوا میں لگا دیا اور کامیاب ہو گئے. پھر انت میں کیا تھا, سوائے شیو بابا کے اس, اچھا آگے بتائیں, چلیے بابا کے پاس.
شیو پتا کو اب یاد کرو, مکتی دھام میں جانا ہے, اپنے سکرموں کے بلکار ہی ستیوگ میں تم کو آنا ہے. شیو پتا کو اب یاد کرو.
میں بتا رہا تھا کہ بابا کا لکش جو تھا کہ مجھے انت میں کچھ بھی یاد نہ آئے, تو آپ کو معلوم ہے 18 جنوری 1969 میں ابجیکٹ ہوئے, اس میں کوئی لوکک نہیں تھا اور کیول دادی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اڑ گئے. कर्मातीत फरिश्ता बन गए, यानी जो पिछले 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करके, यानी कर्मातीत, इस शरीर से भी भान खत्म, शरीर के संबंधियों से भी खत्म करके कर्मातीत फरिश्ता जो हमारा लक्ष्य है बाप समान बनने का, वो उन्होंने प्राप्त किया। तो पहला तो क्या उन्होंने किया, देखो बाबा ने कि सब कुछ समर्पण किया। अभी हम आप सभी तो ऐसे नहीं कर सकते, सब काम काज करने वाले हैं, तब की बात है, यज्ञ की स्थापना होनी थी। लेकिन फिर भी हम ये समझें जो कुछ भी हमारे पास है हम ट्रस्टी बन के संभालें, मेरा नहीं ये बाबा का, ऐसे भी समझ के हम संभालेंगे, उसको ठीक प्रकार से यूज करेंगे और हर बात में बाबा को लाएंगे, तो हम भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते। तो हमें भी बाबा ने आज से 58 वर्ष पहले ये इस ज्ञान का परिचय मिला और ज्ञान सुनकर के बहुत प्रभावित हुए। हम बताएं आपको, अभी भी मैं अनुभव पढ़ के आया था, जो ज्ञान अमृत में बहुत लोगों के अनुभव आते हैं, बहुत एक्सपीरियंस आते हैं कि वो बहुत ही प्रभावित है, बहुत दिन प्रतिदिन लोग अपने भाई बहनों के भी या पुरानों के भी नए की भी अनुभव बढ़ते चले जाते हैं हमारे पास अभी, और लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं बहुत। देखो जब ये बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आए तो लोग बहुत खिलाफ थे, सारे उनके भाई बंद लोग खिलाफ थे, कराची से हैदराबाद से, गवर्नमेंट भी खिलाफ थी, साधु सन्यासी भी खिलाफ थे, जुडिशरी भी खिलाफ थी, ऑल वर अगेंस्ट। एक शिव बाबा ब्रह्मा बाबा थे जो सबको क्या कहना चाहिए, सहन नहीं कहेंगे, फेस कर रहे थे अकेला, यानी उस वक्त उन्होंने अपोज किया, बहुत अपोज किया। हम हमारे होते होते जब हम आए पहले बहुत अपोजिशन थी, हमारे जगदीश भाई को पूछो लोगों ने कितना अपोज किया, बहुत। उसके बाद हमें भी गाली दी, हमारे बाबा को हमारे सामने गाली दी, मैंने कहा तुम कैसे लो, ना समझ बेसमझ होकर के, गाली को शिव बाबा को नहीं मिलती, न कृष्ण को मिल सकती है, किसको मिली, ब्रह्मा बाबा को और उनकी संतान जो उनके बच्चे बने उनको मिली उस वक्त। लेकिन धीरे धीरे पहले अपोज किया, फिर धीरे धीरे टॉलरेट किया, चलो एक संस्था और भी निकल आई है, चलो ऐसे टॉलरेट किया लोगों ने, हाँ भाई चलो ये भी एक संस्था है, और अब क्या कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे इसमें भी खुश नहीं होना, क्या होना चाहिए, यही एक संस्था है बस जो उस विश्व का कल्याण कर सकती है, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया कहां जा रही है, डाउन, वो सीढ़ी उतरनी है, आप जानते हैं धीरे 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 सीढ़ी उतर रही है, और हम तो सीढ़ी से बाहर आके बैठे हैं, है ना, सीढ़ी का चित्र देखा है ना, हम तो ऊपर 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 की तरफ चढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब हम भी जब इस ज्ञान में आए तो हमें ये ज्ञान मिला, बहुत बहुत सुंदर ये नॉलेज जो है, अति अति साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है, रैशनल है, कोई भक्ति का अंश नहीं है और प्रैक्टिकेबल है। ऐसा जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को सुनकर के, हमें कोई किसी प्रेम प्यार में नहीं है, इस ज्ञान को सुनकर, आप देखो जितने यहां पर आते हैं, हमारे मधुबन में आते हैं, ऊपर आते हैं, सेंटरों पर भी आते हैं, सबके मुख से ये निकलता है, क्या निकलता है, यहां बड़ी शांति है ना, सब कहते हैं ना ऐसे, आप तो अपने बाबा के बच्चे हैं, लेकिन दुनिया वाले भी कहते हैं, दुनिया वाले भी कहते हैं यहां बहुत शांति है, बड़ी पवित्रता है, बड़ा प्रेम प्यार है, बड़ा डेडिकेशन है, समझते हैं यहां बहुत वैल्यूज है। तो ये क्यों है वैल्यूज, उनसे अभी एक आए थे हमारे मेयर आए थे दिल्ली के, हमारे ईस्टर्न दिल्ली के, वो हमारे से मिले, आधा घंटा बातचीत हुई, वो कहते थे कि मैं तो ये मेरा इमेजिनेशन से बाहर की बात है, इस कलयुग की दुनिया में ऐसे लोग भी हो सकते हैं, इतने ऐसे भी दुनिया में लोग हो सकते हैं, मैं तो सोच नहीं सकता हूं रियली। उसने कहा कि मैं दुनिया देखी, सब कुछ देखा, हमारे हम बीजेपी के थे, पार्टी है, ये है, मैंने ऐसी संस्था, वो कहता था ऐसी दुनिया में लोग देखे नहीं जो इतने त्यागी होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, भले और कुछ हमारे सिद्धांतों में अंतर होंगे, यहाँ की धारणा है इतनी जबरदस्त है कि बात मत पूछ। परंतु ये वैल्यूज क्यों है, सोचने की बात है। हमारे सब वो कहते हैं तो स्वर्ग लगा पड़ा, ऐसे भी लोग कहते हैं, आते हैं लिखते हैं, हमारे अभी अनुभव में पढ़ के आया, लिखा मैं तो जैसे स्वर्ग में पहुंच गया हूं। तो व्हाई इट इज सो, मैंने एक बार दादी प्रकाश मणि से प्रश्न पूछा, बैठे थे चिट चैट कर रहे थे, दादी लोग ये कहते हैं ये कहते हैं ये कहते हैं, दादी ऐसा क्यों है। दादी ने कहा बाबा हमारे पीछे है, आप क्या कहेंगे, क्या इस उत्तर देंगे आप, बोलो बाबा है। परंतु बाबा तो है ही, लेकिन तो बाबा का बहुत अति सुंदर ज्ञान हमारे साथ। अगर देखो आपको नॉलेज ना मिलता, भले शेर बाबा आया, अगर ज्ञान ना दे तो आप बदलते क्या, सारा चेंज कैसे आया, सारी वैल्यूज कैसे हमारे में आई है, ड्यू टू ये जो इतना सुंदर प्रैक्टिकल रैशनल यानी वैल्यूएबल जो नॉलेज है, उससे हमारे में वैल्यूज आती है, और कोई तरीका नहीं है। योग भी लगता है कैसे, अगर हम पहले जैसा परमात्मा सर्वव्यापी मेरे अंदर है, योग लगता कैसे, तो किसने हमको योग सिखाया, सीखे हम कैसे, इस ज्ञान के आधार से सीखे ना, परमात्मा कहाँ है, कैसे है, क्या बात है, ये सब बातें सुनी, तभी तो हमारे में धारणा आई, तभी हमारे में योग भी लगा, और तभी हमारे में वैल्यूज भी आई। तो मेन चीज जो है इस सारे हमारी धारणाओं के पीछे हमारे इस ज्ञान, वो है यहाँ का बहुत सुंदर, बाबा कहते ना ये ज्ञान रतन है रियली। आप एक एक बात को मनन चिंतन करो, इतनी कमाल का ज्ञान है, वंडरफुल नॉलेज है, कहीं किसी शास्त्र में नहीं, कहीं किसी गुरु गोसाई के पास नहीं। आप उनसे बात करो, कभी किसी गुरु गोसाई से, वो बदलते रहे, कभी ब्रह्म कहेंगे, कभी ब्रह्म मंदिर है, कभी बैर है, कभी ये है, कभी वो है, कोई क्लियर कट नॉलेज है ही नहीं उनके पास। आई टेल यू क्लियरली, हम बहुतों से बात की, हम रामदेव जी के पास कहते ऐसे किसी बहाने से, कोई बात नहीं, और कौन का सुनो। एक दफा हम कोई चैनल खोलते हैं तो कोई दाढ़ी वाले बात करते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, वो कहते हैं एक चोर था, चोरी की सजा खाई, वो पुलिस वाला ले गया, तो कोई बड़ी बात नहीं, चोर भी वही है, चोरी करने वाला भी वही है, सजा देने वाला भी है, जेल में जाने वाला भी वही है, सब वही वही है, बताओ। ये उनका ज्ञान है। और यहाँ बाबा मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, कहाँ से आया, इतनी एकदम क्लियर कट नॉलेज यहाँ मिलती है। तो हम जब इस ज्ञान में सुना रहा था, हम कैसे ज्ञान में आए, हम तो पहले इस किसी को मानते नहीं थे, हम क्या ठीक है कर्म करो, और कर्म का कर्म जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे, कर्म योग मीन्स कर्म में ही योग बने रहो, हम कर्म योग का अर्थ निकालते थे कर्म करना ही योग है, ये सुना हुआ था, नेहरू ने कहा भी कर्म करो ऐसा कुछ। तो हम जब ज्ञान में आए तो हम तो इस चीज को मानते नहीं थे, हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में पटियाला में, तो एक भाई थे ओम प्रकाश जो हमारे इंदौर जोन के इंचार्ज है अभी इस वक्त, वो भी पढ़ने के लिए उसको बाबा ने जबरदस्ती भेजा कि तुम पढ़ो, उसको भी वैराग था, विराज सामने खड़ा है, इतनी चार साल पढ़ाई कैसे करेंगे, तो बाबा ने कहा नहीं पढ़ो तुम जाओ, बहुत तुम्हारी बहुत इंतजार कर रहे हैं, बहुतों को ज्ञान मिलता है मिलना है, तो पहले पहले हम उनको मिले, और वो कहेंगे तो कॉलेज वाले लड़के हैं ये मेरा हंसी मजाक उड़ाएंगे, वो पहले कुछ बताते ही नहीं थे, वो अपना कमरा बंद रख, हमारा साथ साथ कमरा था बंद रखते थे, हम जब खटखटाए तो वो 5 मिनट के बाद खोले, भाई क्या बात तुम्हारे अंदर क्या करवाना है, तुम जल्दी जल्दी कमरा क्यों ज्यादा बंद रखने की दरकार ही क्या, तो मूल्यां होती थी, लिटरेचर होता था, वो कहता उन लोगों को ज्ञान दूं जो कुछ समझने वाले भी हो ना, बाबा कहता वो बांध डंक लगाओ जो नरम जगह हो, क्या कहते हैं वो बिच्छू वहां लगाता है, तो वो देख रहा था मैं ज्ञान किसको दूं। तो एक दिन मेरे पास आया, मेरे पास गीता की छोटी सी वो मिली थी, फर्स्ट है तो पुरस्कार मिला था, वो गीता गोरखपुर की छोटी सी गीता, हमने कोई पढ़ी नहीं थी वो, तो उसको देख कहता ये व्यक्ति जरूर धार्मिक होगा, तो उन्होंने मुझे ज्ञान देना शुरू किया आप आत्मा है, हमने कहा हम तो आत्मा नहीं है, ये तो मशीनरी है, मशीनरी है, इसमें से जब कोई पुर्जा फेल होता है तो खत्म हो जाए, जैसे कार है ऐसे चीजें है, आत्मा की बात क्या है, आत्मा को मैं दिखाऊं आप कहां आत्मा है, अब वो कहां दिखाए और कैसे, बहुत दिन तक चलती रही बात, आप आत्मा है मैं आईना हम तो शरीर है, कई दिन तक चलते रहे तो लेकिन अंदर तो हम मानते थे हम आत्मा, हिंदू लोग तो मानते हैं आत्मा है, जन्म मरण में आती है, पुनर्जन्म लेती है, सब मानते तो थे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम ये बात करते रहे। एक दिन उसने कहा भाई आप आज मान जाओ कि आप आत्मा है। अच्छा, और मैं अंदर से मानता था बिल्कुल, मैंने कहा ठीक है भाई मैं आ ये मानता हूं आई एम सोल, बस आप मानेंगे, इतने शब्द मेरे बोलने थे, चेंज शुरू हो गया, रियली मैं बताऊं आई वॉज चेंजिंग, और उसका अभ्यास शुरू कर दिया आई एम सोल नॉट बॉडी, लिखना शुरू कर दिया जगह जगह आई एम सोल नॉट बॉडी, क्योंकि देह मान बहुत था, पिक्चर जाते थे, वो कैरम ये खेलना वो खेलना, गपशप लगाना, वो होटल में जाना, सब कुछ था, इंजीनियरिंग में डिग्री कोर्स कर रहे थे, तो सारे मित्रता थी, कंपनी थी, बहुत कुछ था, तो बस मैंने ये लिखना शुरू कर दिया, जैसे हमने बाद में सोच देखा बाबा ने भी बहुत लिखा, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा, मुझे तो भी पूरा पता था नहीं, मैंने लिखना शुरू कर दिया दीवार पर भी, अलमीरा पर भी, सब जगह, जो जगह मेरे आई एम सोल नॉट बॉडी, आई एम सोल नॉट, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया अंदर ही अंदर, अंदर एक, और बाकी अभी शिव बाबा का पता नहीं कुछ नहीं, अभी यही बहुत चेंज आया, एकदम दृष्टि वृत्ति तो पावन होने लगी, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि चाहे कितना भी कोई संपन्न हो, हर प्रकार की चीजें हों, लेकिन देयर इज समथिंग मिसिंग इन हिम, क्या अंबानी है बड़ा अमीर है बहुत कुछ है, लेकिन देयर इज समथिंग मिसिंग, वह आंतरिक शांति आंतरिक पवित्रता, हर एक आत्मा का जो गुण तो है शांति है और पवित्रता भी है, लेकिन वो ना समझने से वो और वो उसको ध्यान में लाते नहीं, जब ये ज्ञान सुना हमने मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, वो शांति आनी शुरू होगी, पवित्रता आनी शुरू होगी, दृष्टि पवित्र होगी, बगैर कुछ और सुने, इतना हम जाए बाजार में ये भी आत्मा है ये भी आत्मा, उन दोनों में आत्मा बिंदु रूप अभी फाइनल नहीं हुआ था, वो आत्मा अंगुष्ठ सदृश है, तब वो बाबा कहते थे, कुछ भी बाबा कहते थे वो ठीक था, तो हम उसमें टिक गए और बहुत वो साइलेंस में अंतर्मुखी हो गए, बहुत वो भी देख के इसको क्या हो गया, शायद बहुत जल्दी इसको अनुभव हुआ रहा, क्योंकि उस वक्त बहुत छोटा परिवार था हमारा दैवी परिवार, सैकड़ों मुश्किल होंगे भाई उस वक्त, और 10-12 सेंटर सारे इंडिया में होंगे, तो छोटा परिवार कहते सुखी परिवार, बाबा भी फ्री थे, जैसे जल्दी जल्दी बच्चों को टच भी करते थे, इस प्रकार से बहुत टचिंग आनी शुरू होगी, मैं तो आश्चर्य हूं, अरे भाई मुझे और बताओ तुम्हारे पास क्या ज्ञान है, 2-4 दिन में सारा ज्ञान छोड़ दिया और कोई प्रश्न नहीं उठा, नो क्वेश्चन, हर एक बात बुद्धि में फिट बैठती गई, ऐसा लगे जैसे मैंने ज्ञान सुना हुआ है, ऐसा सुंदर ज्ञान, आत्मा परमात्मा शिव है, अब सोचो दुनिया क्या मानती, राम कृष्ण हनुमान गणेश क्या क्या मानती है दुनिया वालों, अब बाबा ने क्या कहा, ज्योति बिंदु ज्योतिर्लिंगम मतलब कहते थे वो है, वो ना उसका नाक है ना मुंह है ना कान है ना ये है, बहुत ही अच्छी बात लगी, परम धाम भी अच्छा, क्योंकि गीता में हमने पढ़ा हुआ था सुना हुआ था, हम सूर्य चांद सितारों से पार, हर एक बात जो हमने पहले अपने लौकिक फादर से, हम बचपन में बहुत कथा सुनते थे, ये भागवत रामायण महाभारत यही बचपन में 10 साल तक बहुत सुनी, एक टांग पर खड़े होकर तपस्या भी की ताकि ध्रुव के माफिक हमें विष्णु का साक्षात्कार, बचपन में किया था, जो बचपन में बातें सुनी हुई थी सारी बातें रिवील होती गई, बुद्धि में फिट हो गई, परमात्मा परम धाम का वासी है और सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का और ये हूबहू रिपीट होता है, ये बहुत ही सुंदर लगा, आप कईयों को तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गीता में था है ना कि हे अर्जुन हम पहले भी थे अब भी हैं फिर भी मिलते रहेंगे, व्हाट इज दिस हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये सारी बातें थी शिव शंकर मंदिर, जितनी इतनी वंडरफुल बातें सुनी बहुत खुशी हुई, अभी हम ना बाबा से मिले थे ना मम्मा से मिले, बहुत खुशी हुई, सारी गांठें खोल गई, बुद्धि खोल गई, खुशी, हम कहते हैं ज्ञान से भी खुशी होती है, अति इंद्र सुख का पहला स्टेप तो ज्ञान है, जो हमारे घराने का होगा ज्ञान सुनेगा और बड़ा खुश हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, उसको मजा आएगा, ये इतना वंडरफुल नॉलेज है, हम तो इस ज्ञान को सुन के बहुत खुश हो। हमने कहा कमाल है भाई, इतनी यानी सर्वव्यापी नहीं गीता का भवन, श्री कृष्ण नहीं, पतित पावनी गंगा नहीं, सब कुछ ठीक लगा, कुछ भी हमें प्रश्न नहीं उठा। मुरली सुनी ऐसे लगे हमने जैसे मुरली पहले सुनी हुई है, ऐसी फीलिंग आती थी। बस 5-7 दिन हुए तो वो भी आश्चर्य, वो पहले सोच रहा था कि राइट है कि रॉन्ग है, इन ये जो सुना है इसने, ऐसा नहीं कि कोई मेरे प्रति वो कर रहा, वो उसको भी आश्चर्य लग रहा था कि ऐसा हो भी सकता है। तो बस हमने कहा भी ये जो ज्ञान आप सुना रहे हैं, उन दोनों में चित्र वगैरह कोई नहीं थे, कहां से मिला आपको ज्ञान? उसने कहा ये सब सुनाया, परिचय दिया, तो ये ज्ञान सुन के बड़ा आनंद आ गया और ठीक हो गए। तो फिर हम उसने कहा ये तो ये शिव बाबा है ब्रह्मा बा तन्मय द्वारा ये ज्ञान सुना रहे हैं, और वो आप हम तो मिलने जाएंगे जरूर, ये जिस जो सोर्स है ज्ञान का, अभी 7-8 दिन ही हुए थे, हमने कहा मिलना बाबा का, जो बच्चे होंगे भाग के आएंगे, उन दोनों में कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी। तो हम आया बाबा से मिलने के लिए, दिल्ली में बाबा आए हुए थे, बाबा मम्मा दोनों आए थे, हम उनको मिलने के लिए गए। रात के 11 बजे पहुंचे तो वहां आप एक जानते हैं एक बहन थी लीला, वो हैदराबाद सिकंदराबाद में लीला, उसका नाम चटनी था, जानते हैं आप उनको, वो हमारी ब्राह्मणी है, आए हैं वो। अच्छा जी, बहुत खुशी की बात है। वो क्योंकि पहले वो अंबाला में रही हुई थी, तो वो उसको टेलीफोन किया, क्या किया मालूम नहीं, लेटर को पहुंचने में टाइम लगता था, तो वो हमारी ब्राह्मणी थी, वो हमें वो सब सुबह वो उनके हम वो हैं, उन्होंने हमें सुबह वो मिले, पहले रात्रि को ही काफी अनुभव हो रहे थे क्योंकि इतना वातावरण शांत और पावरफुल था, तो बहुत अच्छी तरह से अनुभव हुए। सवेरे बाबा मामा से मिले, तो क्लास के बाद बाबा मामा से मिलना हुआ, तो उस वक्त यानी आप जानते हैं कोई किसी को थोड़ा बताता था मिलना कैसे है, आपको मालूम हो बाबा मम्मा के साथ ऐसे मिलते थे जैसे लौकिक बच्चा अपने लौकिक माँ बाप से मिलता है। मम्मा की गोद में जाते थे, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, मम्मा की गोद में जाता था। अब वो तो जमाना खत्म हो गया, तो हम भी मम्मा की गोद में गए, बाबा की गोद में, बाबा ने पूछा, उसके बाद टोली जैसे खाते हैं वो भी खिलाई, सब कुछ हुआ। तो पूछा बताया बाबा के पहला महावाक्य, देखो वरदान को महावाक्य ये थे, बच्चे विनाश तो सामने खड़ा है, बताइए अब तो सिर पे खड़ा है, तब बाबा का सामने खड़ा है, ये पढ़ाई बढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, अब बताइए। अभी 8 साल 8 दिन का बच्चा हूं मैं, अभी किसी को कहो देखो उसको तो संशय हो जाए क्या बाबा कह रहे हैं। हमने कहा ठीक है, बहुत वैराग आ गया था हमें, तो मैंने बाबा तो ठीक है, ठीक कहते 4-5 साल पढ़ेंगे, फिर जाप करेंगे, फिर ये करेंगे, क्या होगा कैसे होगा डिफिकल्ट। बाबा का ठीक है, आप कहते तो हम पढ़ाई बंद कर देंगे। तो बाबा मम्मा से मिल करके, मम्मा से मिले, बाबा से मिले, तो एक बार उस वक्त क्या होता था, अब तो यहाँ पर क्लास के बाद बाबा मम्मा और हम सब बच्चे घूमने जाते थे सड़क सड़क जैसे वहां पर, तो मैं वहां देख रहा था, एक दो दिन रहे, देखा जब चाय पिलाई जा रही है, बाबा उठ के ऐसे चाय पिलाते थे सबको, बच्चों को, आओ बच्चों पिलाते थे, उसके बाद फिर वो टोली खिलाते थे, भोजन करना ये करना, वहां कोई भंडारी थी नहीं। मैं सोचा ये चल कैसे रहा है, अरे का ख्याल आएगा, हाउ इज गोइंग ऑन। तो मैं वो लीला बहन चटनी थी ना, लीला चटनी, उनसे पूछा, लीला उसका दीदी नहीं कहते, दादी भी नहीं कहते, लीला बहन कहते, लीला बहन ये कैसे चल रहा है सारा, कोई कहता नहीं लेने के लिए, ना कोई इशारा करता है, अब तो बहने इशारा करती होंगी, लेकिन तब तो कोई इशारा भी नहीं, कोई वो भी नहीं, कोई लिचिटकी भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो मम्मा साथ ही मम्मा को कह, उसने मम्मा से आत्म ये पूछता है ये चल कैसे रहा है, और मम्मा की बात ये थी हमेशा, वो कोई भी बात करेगी पहले मुस्कुराएंगी फिर जवाब, ऑलवेज कोई करेक्शन करनी होगी किसी की तभी मुस्कुराएंगी, कोई अप्रिशिएट करना होगा तब भी मुस्कुराएंगी। तो मम्मा मुस्कुरा दी, और फिर क्या मम्मा ने कहा होगा बताओ, कुछ कहा तो होगा, क्या कहा बताओ, मम्मा ने ऊपर ऐसे इशारा कर दिया, ये मम्मा के हाथ था ऊपर से जैसे आता है, ऐसा ही बोला, समझ नहीं क्या बोला, मैं तो आश्चर्य का हूं ऊपर से कैसे आता होगा, हाउ इज पॉसिबल। लेकिन मैं बताऊं आपको, मुझे हंसी आती है। उस हम बिल्कुल 7-8 दिन के बच्चे थे, मैं क्या पता हो। अभी वो कॉलेज में पढ़ते थे, ना कोई कमाई की थी, ना हम कोई कमाते थे, ना वो तो हम घर से आता तो खाते थे। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो थी एक ध्यानी दादी थी, आप शायद नहीं जानते, वो अम्बाला में इंचार्ज थी। अभी वो झाड़ में उनकी फोटो है ध्यानी दादी की। वो हमारे यहाँ भोग लगाती थी आके, वो ऐसे हाथ करेगी, कभी हमें फूल देगी, कभी वो देगी, फल देगी, वो देगी। मैं कहता है हो सकता है ऊपर से आता भी हो इनको। जब ये आ सकते तो वो भी, हम नहीं ऐसा था होगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में मालूम पड़ा, आप सभी को मालूम है कैसे चलता, ऊपर वाला ही भेजता है हम देखे जाए तो। आप योग लगाते हैं, बाबा टच करते हैं कि बच्चे भंडारी में डालो, कुछ भी करो, तो ऊपर वाला ही करता ना। तो थोड़ा हमारे हम और भी कर सकते, इतना बड़ा यज्ञ विचार करो, इतना बड़ा यज्ञ कौन चला सकता है, इतने बड़े रिट्रीट सेंटर चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, हु इज गेटिंग डन। ऊपर वाला ही वास्तव में है, वो ही करा रहा है, हम बताएं आपको। हाँ हम बच्चों द्वारा कराता है, टच करता है, लेकिन कराने वाला कौन है। बहने कहेंगे कोई नहीं मानेगा, ऊपर जब टचेंगे आएगी तभी वो होगा। इस प्रकार से देखा, फिर चले गए। बाबा ने जो कहा था कि बच्चे पढ़ाई काम नहीं आएगी, तो हमने कहा ठीक है हम पढ़ाई छोड़ देंगे, क्योंकि आई वॉज बिगिनिंग से हम इंडिपेंडेंट थे। माता पिता भाई बहने जो थे, जैसा हम कहते हम छोटे थे लेकिन हमारी बात मानते थे। तो हमने एक लेटर लिखा बाबा को वहां से जाकर, बहुत उसका बैराग का इंग्लिश में लेटर लिखा और बाबा ने इंग्लिश में जवाब दिया। फर्स्ट लेटर, माई फर्स्ट लेटर टू बाबा इन इंग्लिश, एंड बाबा रिप्लाइड ऑल्सो इन इंग्लिश। तो क्या मैंने लिखा था, आई डोंट वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड डिजाइन बिल्डिंग, बट आई वॉन्ट टू बी ए स्टोन, कॉर्नर स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस विच यू आर इरेक्टिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। जो अब नई दुनिया जो स्थापन कर रहे हैं, उस बहुत बड़ी जो बिल्डिंग, उसमें एक मैं भी एक कार्न, एक स्टोन बनना चाहता हूँ, एक ईट बनना चाहता हूँ। फिर लिखा, आई डोंट वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड हाईवेज डिजाइन, बट आई वॉन्ट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम एंड कमिंग टू गोल्डन एज। फिर लिखा एक बाबा और उन दिनों में बहुत कहते थे, आई डोंट वॉन्ट टू बी ए डिजाइन मशीनरी, क्योंकि उन दिनों में फर्स्ट टू ईयर में दोनों कोर्स इकट्ठे होते थे, बट आई वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ द किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी विच यू हैव इन्वेंटेड। जो आपने बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है। तो मैं क्या, मैं भी एक इसमें पुर्जा बनना चाहता हूँ। बाबा को मैंने लेटर लिखा है, सुंदर बॉर्डर लगा के, उन दिन में कंप्यूटर थे नहीं, बड़ा हाथ से लिखा और इंग्लिश में बाबा को भेजा। बाबा का 2 दिन में जवाब आया। जो बाबा की क्या उन्होंने जवाब दिया होगा, बाबा ने कहा बच्चे पी पेशेंट, ऊपर बाबा लिखते थे सुदर्शन चक्रधारी, वो ब्राह्मण कुलभूषण, आत्म प्रकाश, ऐसे बाबा बहुत लंबा, आधा लेटर तो टाइटल से भर जाता था। और लाल पेंसिल से लिखते थे, लाल पेंसिल होती ना एक लाल पेंसिल मोटी मोटी, कोई पेंसिल नहीं, लाल पेंसिल मोटा मोटा मोटा, वो हम नहीं पढ़ सकते थे। फिर यीशु दादी वो नीचे हिंदी लिखते थे, बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू यूर को इंजीनियर्स एंड टू यूर लोकल फैमिली। ये बाबा की पहली पहली डायरेक्शन मुझको मिली। तो जैसे बाबा ने कहा हमने कहा वही करना है, बाबा की डायरेक्शन थी तो हमने शुरू कर दिया। हॉस्टल में ही हम जो हमारे इंजीनियर थे उनको ज्ञान देना शुरू कर दिया। हम पिक्चर जाते थे, जो नई पिक्चर आती थी वो बस में जाते थे 50 किलोमीटर, वो देख के आते थे अम्बाला में। तो उसमें हमारे और स्टूडेंट भी जाते थे तो हम उस बस में बैठ जाते थे। अब त्रिमूर्ति मैगजीन तब निकलती थी बहुत मोटी, अब उसको अभी ज्ञान अमृत की तरह नहीं, वो तो और होती थी। तो उसमें अगर आप एक पेज खोलोगे परमात्मा सर्वव्यापिनी, दूसरा खोलोगे गीता का भगवान श्री कृष्ण, तीसरा खोलोगे आत्मा 84 लाख जुनानी मुक्ति, ऐसे होते थे टॉपिक और कुछ नहीं। धारणा वारणा की बातें आजकल वाली नहीं थी, वो तो ज्ञान था, श्रेष्ठ ज्ञान होता था। तो हम वो ले लेते थे सारी, उसमें बांट देंगे बस में, पढ़ो इसको वो, और फिर जब स्टेशन आता था उतर जाते थे, रास्ते में सारी वापस लेते थे। हम कहते थे आपने क्या पढ़ा, नीचे उतरते थे लोग, कहते ये क्या आपका ज्ञान है, ये तो बिल्कुल नई चीजें हैं। मैं कहा नई चीज आप बताओ, मेरे से बहस करो। कहते परमात्मा सर्वव्यापी कैसे नहीं, मैंने कहा हम, ऐसा जोश होता था इतना उमंग उत्साह उल्लास होता था, हम जो कहे वो समझ जाते थे, रियल मैं कह रहा हूं। इस प्रकार से हमारे कई स्टूडेंट, हमारे वो स्टूडेंट बन गए जो कॉलेज में पढ़ने वाले, जो को इंजीनियर बनने वाले थे, हमारे कमरे में क्लास लगनी शुरू होगी। हॉस्टल में हम बैठे हुए हैं, हम लाए चार बहुत दरी लाए और लाल बत्ती जलाई, उन दिनों में शेप तो था नहीं इस प्रकार का, लाल बत्ती जलाए और ग्रामोफोन लाए, वो होता ना चाबी वाला होता था, तब आपने कभी देखा होगा वो बार के, वो लेके हम सुनाते थे, वो गीत गाते थे, सुनते थे ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें जो कैसे गीत है, तू प्यार का सागर है, ऐसे बड़े सुनते थे, वो भी सुनते थे, खुश होते थे वो लोग। तो जिससे क्या हुआ, हमारी क्लास बन गई। तुम्हारा वार्डन के, तुम क्या कर रहे हो, जो हमारे हॉस्टल का वार्डन, हमने कहा हम तो जाते हैं अपने बैर रहेंगे, खाना खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे और अपना सेंटर खोलेंगे। फिर बीच बीच में बाबा मामा से मिलते आते थे, मामा कहती थी अब तुम तो स्टूडेंट हो, तुमको कैसे हम बहन दे सकते हैं। उन दिनों में बहने भी बहुत थी, अभी आजकल तो कमी है ना, वहां तो उस वक्त दादियां भी वही थी वहां पर, अब जो दादे कहते हैं रजौरी में राधे, सभी वहीं पर थे। तो उन्होंने, हमने कहा हम तो स्टूडेंट है, फिर हमने कोशिश करके एक युगल निकला तो निमंत्रण दिया तो बहने भी आ गई। तो इस प्रकार से सेवा केंद्र शुरू हुआ, जो बाबा ने कहा था कि अपने को इंजीनियर्स को ज्ञान दो, तो हमने को इंजीनियर्स को ज्ञान दिया और सेवा केंद्र खोलने के लिए जगह जगह ये एक पुरुषार्थ कर दिया। उन दोनों में एक सेवा केंद्र खोलना बहुत बहुत बड़ी मुश्किल बात थी, मकान मिलना बड़ा मुश्किल था। अब हम मकान ले रहे हैं तो कहते ऑफर करते हैं जमीन ले लो, 10 एकड़ ले लो, 5 एकड़, ऐसे कहते हैं। उस वक्त एक मकान कमरा भी लेना मुश्किल था, मुझे पता है कैसे दादी जान कीजिए और दादी हमारी रहती थी, बाथरूम भी ऐसे ही, बात मत पूछो क्या एड्रेस, कबाड़ी बाजार, कच्चा बाजार, ऐसे ऐसे एड्रेस होते थे हमारे उन दिनों में। लेकिन तो सेवा केंद्र हमारा खोल गया और नाबा और कई जगह सेवा केंद्र खोलने का पुरुषार्थ किया। फिर बाबा ने कहा तुम लौकिक परिवार को ज्ञान दो, तो हम समर वेकेशन में लौकिक घर में गए, तो वहां पर अपने लौकिक माता जी को, पिताजी को और आसपास पड़ोस को, अपने भाइयों को, सबको ज्ञान सुनाने की कोशिश की। सबको अच्छा लगा क्योंकि बाबा के माँ बा के थे, वरदान था कि दो, माता जी जल्दी जल्दी ज्ञान में आ गए। पिताजी ने एक कंडीशन रख दी, हमारे लौकिक पिताजी ने, कहते ज्ञान तो आपका अच्छा है, उनको लिख दिया मैंने कमेंट्री, मैं आत्मा हूं, शोध हूं, शांति तब लिखते ना, उर्दू जानते थे उर्दू में लिख दिया, वो चलते चलते खेती में जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, उसको अच्छा लगा उनको। लेकिन कहता मैं ये चाहता हूं कि मैंने भक्ति बड़ी की है, मुझे अगर आपका बाबा मुझे कुछ दिखा दे, कुछ चीज दिखा दे, कोई साक्षात्कार करा दे, तब मैं मानूंगा। मैंने कहा मैं 3 दिन से चल रहा हूं, मुझे तो साक्षात्कार हुआ नहीं, तो अब मैं आपको कैसे रिकमेंडेशन कर सकता हूं। तो अच्छा, तो गुरुवार आया तो हम सभी बैठ करके हलवा बना करके भोग लगाने बैठे, माता जी, पिताजी, लोग सारे और जो गांव के आसपास के थे। तो क्या हुआ, वो उठ के खड़े हो गए उसमें ही, और मैं देख उठ के खड़े हो गए और किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर, रियलिटी इसी बात से बहुत मारे लोग फैमिली सारी ज्ञान में चली, वो ऐसे पकड़े, फिर ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, वो घूमते रहे और किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में आया नहीं। तो फिर वो बहुत उदास होकर नीचे उतरे, उदास थे, बड़ा वो घबराए हुए थे। मेरे क्या हुआ, मैं खुश था कि समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो तो रहा है कम से कम। तो उसने कहा मेरे लौकिक पिताजी ने कि मैं कहीं ऊपर गया, मुझे बहुत छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण दिखाई दिया, मैं उनको श्री कृष्ण से बहुत प्यार था, बहुत, वो भागवत पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे रात को, भागवत पुराण में श्री कृष्ण की बहुत कहानियां किस्से बहुत है, हम भी सुनते थे बड़ा, वो उनको वो जो पकड़ने जाए, यहां जाए तो वहां चला जाए, वहां जाए तो वहां चला जाए, उनके हाथ में नहीं आया। तो फिर जब नीचे उतरे, फिर कहा कि ये मैं देखा, आप क्या करें, हाँ कहते फिर आपके बाबा जी आए, उन्होंने कहा जब आप धारणाएं शुरू करोगे, जब निश्चय बुद्धि बनोगे, श्रीमद पर चलोगे, तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। मैंने कहा ठीक है, उन्हें जो छोटी मोटी बातें थी छोड़ी, वो खान पान ठीक किया, वो किया, अगले गुरुवार फिर हम भोग लगाया तो फिर वो ऊपर चले गए। कमाल तो ये देखो, ऊपर जा करके फिर वो श्री कृष्ण की गोद में आया, बड़े आंसू बहाए, बड़ा उनको खुशी हुई, वो सारा अनुभव नीचे आके सुनाया कि देखो बाबा ने ये वो श्री कृष्ण देखा, वो देखा, तो हम तो बड़े आश्चर्य कहेंगे, ना तो अभी बाबा से मिला है, ना मम्मा से मिला है, ना विधान बड़ी बहन यहाँ पर है, ना दादी है, कुछ है, यहाँ पर ये ध्यान में चलने लगा, मुझे तो, और सभी जो गांव वाले भी आश्चर्य कहेंगे उनको भगत कहते थे क्योंकि वो भक्ति बड़ी करते थे कि भगत जी को तो भगवान मिल गया देखो, बहुत लोग ज्ञान में चलने लगे। हमारा पूरा परिवार, तीन चार भाई थे वो भी, माता जी पिताजी बहन सबको अच्छा लगा, ज्ञान में चलने लगे। तो बाबा के महावाक्य थे, बच्चे अपने लौकिक परिवार को ज्ञान दो तो वो महावाक्य भी सिद्ध हो गया, वरदान रूप बन गया वो। तो हम तो फिर और फ्री हो गए, बहुत अच्छा हुआ। तो फिर हम आए ज्ञान में, तो फिर बाबा ने कहा जैसे कैसे हम पढ़ाई पूरी की, भाई पढ़ाई कर लो, चलो हमने जॉब तो करना नहीं है। बाबा ने कहा काम नहीं आएगा, चलो दो तीन साल बाकी रहते, पूरा कर लिया लेकिन विद डिसइंटरेस्ट, बिना पढ़े पढ़ाई पूरी की। आप मानेंगे कभी भोग है, उन दिन में दो दफा भोग लगता था, गुरुवार को भी लगता था इतवार को भी लगता था, कभी भोग हो रहा है, कभी प्रदर्शनी है, कभी बाबा आ रहे हैं, कभी मम्मा आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है। हम तो इन्हीं कामों में बिजी रहते थे, कभी सेंटर खोलना है, पोस्टर लगाने हैं, पोस्टर छपवाने हैं, भिन्न भिन्न सेवाओं में लगे रहे। जाएंगे एक हफ्ते के बाद क्लास में जाएंगे तो लोग हमको देख के हंसते थे, ये आ गए प्रिंस, ना ये पढ़ते हैं ना कुछ करते हैं, और ये अपने आप आ जाते हैं। हाजरी माई लग जाती थी, वो लोग टोपो लगा देते थे। तो इस प्रकार से विदाउट एनी स्टडी, विदाउट एनी इंटरेस्ट, चार साल के बाद हम पास भी हो गए। हम पता नहीं कैसे पास हुए, इच्छा ना हो तो भी पास हो गए, जो आया लिख दिया उसने, पता नहीं कैसे पास कर दिया। सच कहता हूं आपको, मैं तो रियल बता रहा, आई वॉज अ टॉप ऑलवेज स्कॉलरशिप होल्डर फ्रॉम फोर्थ क्लास टू ट्वेल्थ क्लास एफ एस सी तक। उसके बाद जब पहले भी ठीक थे, ज्ञान में आए तो कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि संस्कार ही नहीं थे कि हमको तो बाबा ने कहा है पढ़ाई काम नहीं आएगी तो क्या पढ़ना है। फिर भी जैसे कैसे पास हुए, डिग्री मिल गई, डिग्री लेने भी नहीं गए। हाँ टेम्परेरी डिग्री मिलती है वो, मुझे अब तक ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग भी नहीं की। तो हम पढ़ाई करने के बाद बाबा मामा के पास है, लौकिक माता पिता जी ज्ञान में आ गए थे, उनको भी लेके हम मधुबन में आए। हाँ इसके बीच में और कई दफा मधुबन आते थे, उन दिनों में मधुबन कोई सेंटर ऑफ सर्विस नहीं था, यहाँ कोई ज्यादा सेवा नहीं थी, ना लोग आते थे। ये तो बस गर्मियों के दिनों में आएंगे, साल में एक दो बार मुश्किल से आते थे। अब तो हर दो महीने में बहने आ जाती है, कभी कोई प्रोग्राम है कभी। अब तो दिस इज द सेंटर ऑफ ऑल सेंटर्स। उस वक्त बाबा कहते जाओ कलकत्ता जाओ, बॉम्बे जाओ, यहाँ जाओ, सेवा करो। उस वक्त ये कोई ज्यादा इसका महत्व, बाबा थे वो उसका महत्व था, परंतु सेवा के लिहाज से महत्व नहीं था। तो हम आए बाबा मम्मा से मिलने के लिए एक दफा, तो उस वक्त बाबा की एज 80 ईयर्स थी, 80 साल की थी, और हम कितने होंगे 21 साल के होंगे। तो बाबा को एक बड़ा देखा, क्या और भी चीजें देखी, इतना देही अभिमानी यहाँ वातावरण था, देह और देह के संबंधों को सब भूले हुए थे। देखो उस वक्त बाबा की युगल भी जिंदा थी, उसका नाम था क्या नाम, यशोदा। बाबा वो क्या कहती थी, बाबा बोलती थी, बाबा उसको बच्ची बोलते थे। बताइए कैसा कौतुक है। मम्मा की माँ रोचा वो भी जिंदा थी, वो ध्यान में जाती थी, बाबा उसको मम्मा उसको बोलती थी रोचा, शब्द नाम बोलती थी, बाबा नाम बोलता बोलती थी और मम्मा रोचा उसको मम्मा कहती थी। तो देखिए रिलेशन तो कुछ वो खत्म, देह के संबंधों से तो बिल्कुल पार थे, बाकी पुरुषार्थ देही अभिमानी का करते थे सब। तो बाबा को हमने देखा क्या, उस वक्त हम जब आए, बाबा की 80 साल की उम्र थी। ये जो अभी जहाँ शांति स्तंभ है ना, यहाँ कोई मकान नहीं था, ना ये हिस्ट्री हॉल था तब, ना सामने वाले ट्रेनिंग सेंटर थे, ना ये था, केवल टीन वाला जो था छप्पर जो अभी भी बीच में है, उसके अलावा यहाँ कुछ मकान बना हुआ नहीं था। क्लास भी जो होती थी, जो ईशुदारी का दफ्तर है, सीधे टाट बिछा करके ऐसी क्लास होती थी, हम भी वहां बैठते थे और बाबा जाए ईशुदारी के दफ्तर में आकर के पत्र लिखते थे। झोपड़ी भी उन दिनों नहीं बनी थी, अल्लाह कोई हिस्ट्री हाल वगैरह कुछ नहीं था। तो बाबा को हमने क्या देखा, उस वक्त बच्चे थोड़े आए हुए थे पंजाब से, इधर से उधर से, बाबा उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे, होता ना गेंद जिसे आजकल बच्चे नहीं खेलते, वो डालते हैं तो वो ऐसे लगाते हैं, तो बाबा बच्चों को खिला रहे थे। मुझे याद है वो सीन यमुना में, वो श्री कृष्ण क्रिकेट खेलते थे और वो सारा वो गेंद खेलते थे, बाबा बच्चों को खिला रहे थे जैसे। तो मैं बड़ा खुश हूं, मैं देखो इतना बड़ा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा उसके अंदर है और बच्चों को खिला रहा है। तो मैंने, मेरे पास कैमरा था, फोटो खींचने की कोशिश की, बाबा ने कहा नहीं खींचना। बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारण किया, बच्चे देखो देही अभिमानी बनाने के लिए, बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं। कौन बोल रहा है ये है? दोनों ब्रह्मा बाबा के आत्मा का फोटो थोड़ा आएगा, बच्चे ये फोटो तो आए, मेरा फोटो तो आएगा नहीं, और ये शरीर तो छीछी है। बाबा हमेशा अपने शरीर के लिए से कहते कुछ नहीं है, तो किसी काम करनी है इसका क्या फोटो करेंगे। मैं बात तो राइट है, उन दिन में फोटो खर्चा भी होता था, आजकल तो कोई कंप्यूटर से निकालो फटाफट, उन दिनों में बहुत खर्चा होता था, रील धुलाओ, वो करो ऐसा करो। बाबा ने कहा क्या करना है, फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे का दिल है तो खींच लो, फिर हमने खींच भी लिया। इस प्रकार से बाबा हमेशा हर बात में देही अभिमानी बन के रहो, देह को मत देखो। हमेशा बाबा की, जब ब्रह्मा बाबा की महिमा शुरू करेंगे, बाबा कविता बंद करा देगा। कहता है ज्ञान की महिमा करो साथ उसकी, जिसको जो मुझे बनाने वाला उसकी महिमा, किसी इंसान की महिमा मत करो। कभी जब बाबा हमारे पटियाला में आए, हम बड़ा एक बहुत अच्छी बिल्डिंग दी उनको, रिसीव किया, ना फूल लिया ना हार लिया, कुछ नहीं लिया। बाबा यहां तक कहते तुम मुझे स्टेशन पर लेने क्यों आते हो, मैं अपने आप आ जाऊंगा, जब दिल्ली में हम थे। तो इस प्रकार से बाबा यानी वो कहते थे कि क्यों इन फॉर्मेलिटीज में क्यों जाए। इस प्रकार से बाबा बच्चों को आगे बढ़ाते थे, सिखाते थे कि ज्यादा मनी को वेस्ट करने की दरकार नहीं है। और इस तरह चलते चलते जब हम बाबा के पास पहुंचे, दो तीन बार बीच बीच में आए, इंजीनियरिंग के बीच में आए, और तब बाबा ने कहा बच्चे हम बाबा हम ये क्या करना है। बाबा ने कहा बच्चे मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारी पढ़ाई ये काम आने वाली नहीं। तो हमने क्या किया, ठीक है। बाबा ने कहा पहले जयपुर भेज रहे थे, फिर हमको भ्राता जगदीश जी के पास सेवा के लिए भेज दिया, उनको हैंड की दरकार थी। तो हम तभी 1961 में दिल्ली में सेवा करने के लिए जगदीश भाई जी के पास चले गए। हमारे पिताजी थोड़ा घबराते थे, भाई इंजीनियरिंग पास किया ये किया है। उनने मम्मा से कहा, मम्मा से बड़ा प्यार था, मम्मा अगर ये कुछ जॉब नौकरी करेगा हमें पैसे की दरकार नहीं, आप यज्ञ में हेल्प करेगा हमें दरकार नहीं। मम्मा ने कहा नहीं, जो बाबा ने कहा है, बाबा इसकी जन्म पत्री को जानता है, इसलिए जो बाबा ने आदेश दिया है वो ही वास्तव में ठीक है। तो क्या हुआ, हम चलते रहे चार पांच साल जगदीश भाई जी सेवाएं की, उनसे सीखा प्रिंटिंग क्या होती है क्या होता है। ये देखो बाबा भविष्य जानता है क्या करना है क्या नहीं करना, क्या किस बच्चे को क्या सेवा देनी है। तो हमें चलते रहे सेवा करते रहे। फिर क्या हुआ, कुछ दिन कुछ समय के बाद ये एग्जीबिशन बननी शुरू हुई। हमें ड्राइंग तो आती थी, थोड़ी बहुत सीखी हुई थी, एग्जीबिशन बननी शुरू हुई तो बॉम्बे में, तो सीढ़ी का चित्र वहां से एक स्लाइड हमारे पास आया, तो हमने उसको स्लाइड को एनलार्ज करके एक बहुत सुंदर चित्र सीढ़ी का हमने बाबा के पास भिजवाया। दादी प्रकाशमणि और दादा किशोर, ये हमें बहुत खुशी है, हम सभी पूर्वजों के साथ किसी न किसी सेवा के कारण से कनेक्शन में जरूर आए, चाहे दादा विश्व किशोर हो, चाहे भ्राता जगदीश जी हो, दादा विश्वरतन हो, दादा चंद्रहास हो, और सभी दादियों के साथ भी, बड़ी दादी दीदी, दादी ब्रज इंद्रा, दादी ब्रज शांता, सभी दादी जानकी तो अभी भी, सबसे हमारा कोई ना कोई कारण से कनेक्शन रहा। तो हमने चित्र भेजा बना के बड़ा सुंदर, तो बाबा को बहुत अच्छा लगा। पहले चार पांच साल तो हम जगदीश भाई के साथ थे ही, उनसे बहुत कुछ सीखा। टॉप, ही वॉज मोस्ट इंटेलिजेंट, आई टेल यू मोस्ट इंटेलिजेंट, योगी ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, और वो दूरदर्शिता, उनमें बहुत कुछ गुण थे, बहुत ज्यादा, आई टेल यू बड़े त्यागी तपस्वी थे। मैं कहता हूं उनने कमाल की सेवा की है, ही इज द फाउंडेशन आई टेल यू। ओम मंडी या जो एक हमारा सत्संग था कुछ, उसको उसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय का रूप देने के वास्तव में निमित्त बने। हम बता दें दादिया तो है, बाबा भी है, तो बाबा ने उनको ये निमित्त बनाया, बताया उनके साथ रहने का बहुत मौका मिला, बहुत बातें उनसे भी बहुत कुछ सीखी। तो हम जब ने यहाँ भेजा चित्र, बाबा को बहुत अच्छा लगा, पर उस दिन के बाद मुझे बाबा के डायरेक्ट लेटर आने शुरू हुए। आप सीढ़ी में देखते ना, پہلے کچھ اور تھی، بابا اتھارٹی سے بات کرتے، بچے یہ بناؤ، اس میں یہ رکھو، اس میں وہ ہے نا ڈب جا وہ ہے، وہ گڑیا کا کھیل، وہ اس کو وہ بھی دکھاؤ، اس میں وہ دکھاؤ، گلزاری لال نندا لیٹا ہوا ہے کانٹوں کے سیج پر، وہ بستر بنایا ہوا ہے اس کا، وہ تکیا بنایا ہوا فائبر پلان کا، وہ رکھو، ہاتھ میں پیالہ دو، وہ بھیک مانگ رہا ہے، ایسے ایسے بابا اتھارٹی سے بات کرتے تھے، بات مت پوچھو، اتھارٹی تھی زبردست، تو کتنی باتیں تھی، تو بابا کے پتر آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی، پھر اور ہم کاریہ کرتے تھے، تو ہم نے یہ دیکھا، آپ وچار کرو کتنا بابا آل مائٹی اتھارٹی ہے، آپ دیکھو سارا ہمارا بھارت، سارا وشو دو باتوں کو بہت مانتا ہے، ایک رامائن، آپ کے یہاں تو میسور میں تو بڑا وہ ہوتا ہے راون جلاتے ہیں، یہ سارے انڈیا میں وہ راون جلتا ہے، پتہ نہیں حیدرآباد میں ہے کہ نہیں معلوم نہیں، سارے آپ وہ ابھی رام لیلا آئے گی، پرائم منسٹر آئے گا، تیر مارے گا اس کو راون کو، یہ وہ بہت وہ کیا اس میں کیا دکھاتے ہیں، دشرتھ تھا، رام چار پتر تھے، یہ وہاں گئے سنیاس کیا، وہ ان کو بنواس ملا کر گئی تھی، وہ اڑا کے لایا، وہ کیا نام ہنومان جی، یہ وہ کتنی بڑی کہانی، کتنی بڑی باتیں ہیں، رام اور سیتا کو چرا کے لے گیا، اور اشوک واٹکا میں رکھا، یہ رکھا وہ رکھا، کتنا بڑا ایک زبردست، لکشمن مورچت ہو گیا، لوگ روتے ہیں، ہمیں بھی آنسو آتے تھے، اور اتنا راون کو مارا جلا دیا، اور پھر وہ ایودھیا میں آ گئے، یہ ہے کہانی، یہ ایک وہ لوگ سچ مانتے ہیں، بابا نے کیا کیا، بابا نے دو شبد بولے، کیا بولا کہ بچے راون تو ایسا تھا ہی نہیں، اب بتاؤ، ساری رامائن ختم، دیکھو کتنی اتھارٹی بابا سے کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے دنیا میں، کہہ دو اس کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے، بابا نے کہا ہے، بھگوانو واچ، راون ایسے پانچ وکار والا کوئی سر والا تھا، دس سر والا، کتنی بڑی بات ہے یہ، تو ساری رامائن کو بابا نے ادھیاتمک بتایا، بھائی تم سیتا ہو، جب بھولتے ہو لکشمن ریکھا پار کر دو تو راون اٹھا جاتا ہے پانچ وکار، پھر میں آتا ہوں میری یاد کر دو تو تم ایودھیا میں آیا، تو یودھ کا نام نشانی ستیہ ہوتا ہے، تو دیکھو کتنی بات کو کہاں کہاں کون بتانے والا، یہ سوائے پرماتما کے کوئی بتا ہی نہیں سکتا، اور دوسرا ایپیسوڈ ہے وہ گیتا کا، کیا بات کبھی گیتا وہ مہابھارت دیکھا ہوگا، کتنی لوگ دیکھتے تھے، تیر آ رہا وہ تیر کٹ رہا ہے، یہ کیا کیا باتیں تھی، دریودھن یدھیشٹھر یہ وہ، کتنی لمبی چوڑی باتیں ہیں، اور سب دنیا مانتی ہے اس بات کو، بڑے بڑے ودوان آچاریہ پنڈت سب مانتے ہیں، اور بابا نے کیا کہا، بابا نے کہا بچے گیتا گیان تو میں نے دیا، اور وہ دواپر میں نہیں، میں کالیو کے انت میں دیا، ساری جو ہے مہابھارت کا ہو گیا، اتنی بڑی باتیں، ہو از سیئنگ دس تھنگ، سوئم گاڈ دے رہا ہے، کوئی انسان نہیں دے سکتا یہ، اور کوئی چیلنج نہیں کر سکتا آپ کو، مما کی بات سناتا ہوں آپ کو، ایک دفعہ وہ پونا میں گئے تھے، کہاں تھے رمیش جی سناتے ہیں، کہ وہ کئی وہ بڑے بڑے ودوان وغیرہ ان سے ڈسکشن کرنے کے لیے آئے، ان نے پوچھا آپ کا گیتا اور گیتا اور مہابھارت کے بارے میں کیا وچار ہے، اس نے کہا میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں، اتنا بڑا یدھ ہوا، 18 دن گیتا گیان سناتے رہے، اور کورو سب ختم ہو گئے، ٹھیک ہے ختم ہوئے نا، یادو بھی ختم ہو گئے، پانڈو بچے پانچ، وہ پہاڑوں میں گل گئے، کیا ریزلٹ نکلا سوچو، واٹ ہیپنڈ آفٹر گیتا، یہ بھگوان کا کاریہ کیا، آپ سوئم ہی بتاؤ مجھے، وہ آپس میں مونج گئے وہ لوگ، تو ودوان بیٹھے، بات تو رائٹ ہے بھائی، کوئی بھی یدھ ہوا اتنا بھاری، کچھ تو ریزلٹ نکلنا چاہیے، نو ریزلٹ، تو کتنا بابا نے ہم کو ترکال درشی ترنیتری بنا کے کتنا گیان دے دیا ہے، ونڈرفل ہے، ہم بدام براہمن اتنے، بابا نے مرلی میں کہا نا تم براہمن کیسے ہو، ستیگ سے بھی زیادہ اونچے ہم جاؤ، 18 پوائنٹ بتایا تھے بابا نے، ستیگ میں کیا ہوتا ہے، ابھی سنگم پر کیا آپ کیسے آپ کی پرکرتی ہے، وہ ساری 18 وانی میں تھا ابھی پچھلے اس کی 18 بابا نے بتائی کہ کیسے براہمنوں کو وہ ہوتا ہے، تو اس پرکار سے اب ہمیں دیکھو سنتے سنتے ہم بتائیں، ایک پھر ہم نے چترشالہ کھولی وہاں پر، لوکت ورثہ ملا تھا، ہم 20 چتروں کا ایک سیٹ بنا کے بابا کے پاس لائے، میں آپ جلدی کر رہا ہوں ٹائم ہونے والا آپ کا، تو ہم نے وہ وہاں رکھا، ہسٹیال بن چکا تھا، ہسٹیال بن گیا، بابا اور مما یا بابا اور دیدی उनको देखने के लिए, बड़े अच्छा लगा उनको। तो बाबा ने जब चित्र देखने के बाद मुझे बुलाया अपने पास, क्या कहा, बच्चे साथ बैठो गद्दी पर, देखो भगवान हो आज, भगवान शिव बाबा ब्रह्म तन में, कहता मेरे साथ बैठो। मैं तो छोटा था, हिचकिचा रहा था, बिठाया और बाबा ने फिर वरदान दिया, जबरदस्त वरदान था, बच्चे जो बाप की गद्दी सो, किसकी, बच्चों की गद्दी। कौन कहता है, लौकिक बाप भी ऐसे कहता है, लेकिन जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। वहां कहां, कहां बोलो, सत्य। तब आप किसी गद्दी संभाल दें, हमारी बहनें सभी घर गृहस्थ वाले भी क्या समझते हैं, किसका घर है ये, कैसे क्या समझते हैं, है ना, बाबा का घर। जो कारोबार करते हैं किसका है, बाबा का। हमारा एक ही है, मैं अपना ठीक पर हूं और बाबा की सेवा में लगा रहूं, तो ये किसकी है। तो जो ऐसा समझते हैं, तो बाप की गद्दी से बच्चों की, और यहां भी मिलेगी वहां भी मिलेगी, ऐसा नशा चढ़ा दिया बाबा ने। क्या सेवा उससे हुई, सैकड़ों हजारों प्रदर्शनियां बनी, हमने चित्रशाला खोली, स्टूडियो खोला हुआ दिल्ली में, म्यूजियम बने, जगह जगह म्यूजियम बनते, हम जाते थे कभी बॉम्बे, कभी कहीं, कभी कलकत्ता, बनवाते थे म्यूजियम, मेले बने बहुत बड़े बड़े, सब ये कारोबार चला। तो किसने, ये बाबा के महावाक्यों से, बहुत जोश से और बहुत उमंग उत्साह से ये सारा कार्य हुआ। उन दिनों प्रदर्शनी का वास्तव में जमाना था, अब तो और बातें होगी। इस प्रकार से बाबा से मिलते जुलते आगे बढ़ते हैं, पर अभी क्या करना है हमको, बाप समान क्या बनना है, क्या बनना है? बोलो, कर्मातीत फरिश्ता बनना है। थोड़ा 5 मिनट बोलूंगा आपको, कर्मातीत फरिश्ता बनना है। कैसे बनेंगे हम बताएं, कर्मातीत फरिश्ता बनने की पहली स्टेज कौन सी है, आप बताओ, फर्स्ट स्टेज बोलो। पहला तो ये चाहिए, आप सब बड़े हैं, बहुत मेरी अनुभवी हैं, बहुत दिनों से ज्ञान में चल रहे हैं, वो तो फर्स्ट स्टेज पार कर ली। पहली स्टेज है विकर्मा जीत, नो विक्रम। अब ब्राह्मणों से कोई भी विक्रम नहीं होना चाहिए, नहीं होता होगा, ठीक है ना, होता है अभी कभी नहीं, विकर्मा जीत, हम कुछ विक्रम नहीं करते। हमें बाबा ने कर्मों का, विकर्मों का ज्ञान बताया है, अब कोई विक्रम नहीं होगा, होना भी नहीं है, होगा भी नहीं। सेकंड स्टेज क्या है बताओ, सेकंड स्टेज है विकल्प जीत। अब हमारे ब्राह्मण बच्चों में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो काफी दूर है अभी, नो विकल्प, कोई विकल्प नहीं। अगर आए कभी, भगाओ उसको, डंडा लगाओ, नहीं कभी नहीं आएगा, क्योंकि जैसे शुद्ध संकल्पों से आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, अगर विकल्प आया तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आपने जो कमाई की तो कभी नहीं आना चाहिए विकल्प, नो विकल्प, दृष्टि वृत्ति प्योर, नो विकल्प। तो दूसरी स्टेज है विकल्प जीत। अब हम बच्चे बाबा के इस स्टेज को भी पार कर गए ना, ठीक है ना, किया है ना, कर गए, बाबा को भी फेथ है कि मेरे बच्चे अब विकल्पों में नहीं अब आते। थर्ड स्टेज क्या है, व्यर्थ अतीत, कोई व्यर्थ ना आए, व्यर्थ नहीं, ये क्यों क्या कब कैसे तो है ही मोटा मोटा व्यर्थ, परंतु जो जिस अभी किसी संकल्प का भी कनेक्शन नहीं है, अभी मानो आपको बंगलोर याद आ जाए, कुछ याद आ जाए, अभी खाना खाने जाना वो याद आ, तो वो व्यर्थ है। जो संकल्प चाहिए वो संकल्प आए, वो है बात ठीक, कार्य व्यवहार का भी ऐसे है, तो व्यर्थ अतीत। अब फोर्थ क्या है, यानी साधारण अतीत, हमारे संकल्प साधारण भी अब ना हो, हर संकल्प विशेष हो, हम बताएं, तब है बाबा के जैसा पुरुषार्थ। बाबा का हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प विशेष था, हम बता दें आप, किसी को ऐसे बाबा देख लेंगे ना, उड़ जाता था, खुश हो जाता था, کسی پہ ایسے ہاتھ بھی رکھ دیں گے, واہ بابا نے کیا کیا. ان کا ہر قدم, ہر کرم, ہر بول اور ہر سنکل وشیش تھا. تو ہم کیا باپ سمان بننا نا, بننا ہے کہ نہیں؟ تو ایسا ہونا چاہیے, ہمارا ہر قدم ہر کرم وشیش ہو, ویرتھ نہ ہو. ابھی بابا بھی کہتے ہیں کہ میرے بچوں میں ویرتھ کم ہے, زیادہ نہیں ہے. ویرتھ بھی کم ہے کہتے ہیں, وہ شدھ بھی زیادہ نہیں ہے, یعنی سمرتھ بھی زیادہ نہیں ہے. ابھی وہ ہوتا ہے نا, وہ سکوٹر چلاتے ہیں, اس گاڑی کو وہ نیوٹرل پر رکھ دو, نیوٹرل گیئر پر پٹرول جا رہا ہے اور گاڑی نہ آگے جاتی نہ پیچھے جاتی. تو کرنا کیا ہے, ہم کو پازیٹو رکھنا ہے, شدھ سنکلپ ہمیں بار بار کرتے رہنا, کرتے رہنا, ریوائز کرنے, ریوائز. میں تو دیکھو جی بندو بن بندو کو یاد کر تو کرنا ہی ہے, لیکن شدھ سنکلپوں کا خزانہ جمع کرتے چلو, کرتے چلو, کرتے چلو. اپنے کو یاد کرو, بابا کو یاد کرو, گھر کو یاد کرو, اور یاد کو رمنیک بناؤ, سوکھی سوکھی مت بناؤ. دیکھو میں تو بابا کو گنوں سے یاد کرتا ہوں, بابا کے سات گن میرے میں آنے چاہیے. بابا کو نو سمبندوں سے بھی یاد کرتا ہوں. بتاؤں کون سے نو سمبند ہیں؟ پہلا سمبند کون سا ہے آپ, موسٹ بیوٹیفل سمبند, موسٹ لولی, بتاؤ. نو, پہلا کون سا ہے؟ پہلے ماں کا سمبند ہے, سمجھے؟ ہی از اور ڈیئرسٹ مدر, ہماری بہت میٹھی میٹھی پیاری پیاری ماں ہے. کون ہے؟ برہما بابا ہے ساتھ. ماں کون بنا؟ شیو بابا آیا, برہما تبھی تو بنا ماں. ڈیئرسٹ مدر کیا کیا پلاتی ہے, گیان دودھ پلا کے ہرشٹ پشٹ کر دیا بابا ہمیں. جب بابا نے دودھ پلایا, ہم جب تھے ایک دفعہ دلی میں تھے بابا کو ملنے کے لیے, سویرے سویرے گئے بابا نے پریکٹیکل, بابا سویرے سویرے دودھ پیتے تھے وہ پھیکا, تو آؤ بچو آؤ, ہم جاتے تھے چمچ سے مکھ میں دودھ پلایا, میں ماں ہوں تمہیں دودھ پلا رہی ہوں, پریکٹیکل کر کے دکھایا. وہ یاد آتا ہے ہمیں. تو یہ شدھ سنکلپ سب یوگ ہی یوگ ہے, یہ نہیں بات میں بندو بن کے دیکھتے رہے اور نیند کرتے رہے, وہ کیا کریں گے اس کو؟ نہیں, کچھ سنکلپ کرنا چاہیے. ڈیئرسٹ مدر, سویٹسٹ فادر, وہ سویٹسٹ اتی میٹھا, باپ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے نا, سب کو بچوں کو دے دیتا ہے. سویٹسٹ فادر کیا کرتا ہے ہمیں؟ سویٹ ہوم اور سویٹ راجدھانی کا ورثہ دے ہی دیا ہے, سویٹسٹ فادر. اور ٹیچر کیسا ہے؟ تھرڈ ہے ٹیچر, ہائیسٹ ٹیچر ہے, اس سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں ہے. اور پڑھائی سمپل سمپل ایزی پڑھائی, اور اسٹیٹس 21 جنموں کے لیے اونچ پد کی پراپتی کراتا ہے, بٹ اے ہائی ٹیچر اٹ از. اور پڑھائی سمپل کتنی ہے؟ لوگوں سے پوچھو کہ وہ سرشٹی کی آیو کتنی ہے, وہ کہیں 4,32,200, 500 ایسے بولیں گے. ہماری ماتا ہے تو اس کو یاد ہی نہیں کر سکیں گی. اور بابا کیا کہتا ہے؟ بچے 5,000 کا چکر ہے, 4 بھاگ کر دو 12.5 سال. کتنی سمپل پڑھائی ہے. بابا کا چکر کو یاد کرو, چکربتی راجا بن جاؤ, واٹ از اے سمپل تھنگ. اب کیا مشکل ہے چکر کو یاد کرنا, اٹ از بھگوانو واچ. بابا کہتا ہے چکر کو کیول یاد کرو, چکربتی راجا بن سکتے. چکر کسی کو گیان بھی دے دیں گے تو وہ بھی کچھ اس کو پراپتی ہو جائے گی. تو دیکھیے کتنا ہائیسٹ پڑھائی, کتنا ہائیسٹ اسٹیٹس, سمپلسٹ پڑھائی, اور کتنا ایزی پڑھائی ہے. سب کوئی غریب ہو امیر ہو کچھ ہو ماتا ہو ان پڑھ ہو سب پڑھ سکتے ہیں. ہماری لوگ ماتا جی بھی رہتی ہے ہمارے ساتھ, 110 سال ان کی عمر ہے. بابا نے کہا, بابا کہا, بابا میں تو ان پڑھ ہوں. بابا نے پتہ کیا جواب دیا؟ کلین سلیٹ پہ لکھنا بڑا ایزی ہے. دیکھو بابا کے ماں باپ کیا, اگر لکھا ہوا ہوگا پہلے الجبرا ٹریگنومیٹری سب پڑھا ہوا ہوگا, اس کو بلانا مشکل ہوگا. انہیں پڑھا کوئی نہیں, لکھنا بڑا آسان ہے. تو ہائیسٹ ٹیچر, اور تھرڈ ہولیسٹ ست گرو, پرم پوتر ہمارا گرو ہے. وہ کیا دیتا ہے؟ آشیرواد دیتا ہے. آشیرواد مانے ہم کو بردان دیتا ہے, روز بردان آتے ہیں, جھولی بڑھ رہا ہے ہماری. اور پانچواں سمبند کیا ہے؟ انفیلنگ فرینڈ. سب دوست دھوکا دے جائیں گے, سن لو ہم بتا دیں آپ کو, بہت کیس آتے ہیں ہمارے پاس. ہم نے وہ بزنس کیا, پارٹنرشپ کی, وہ ہمارا پیسہ ہی ڈوب کے لے گیا. ہمارا بھائی تھا, ہم کو دھوکہ دے گیا, اس نے یہ کر دیا. تو وہ فیل کر دیں گے دوسرے, لیکن انفیلنگ فرینڈ جو ہے, سدا ساتھ نبھانے والا ہمارا دوست, وہی ہے اور کوئی نہیں ہے. उसको इमर्ज याद माने इन संबंधों को इमर्ज करो। मैं बाबा के हाथ में हाथ मिला के चल रहा हूँ, चल रही हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा कंपेनियन है, ये फीलिंग आनी चाहिए, अनफीलिंग फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है, सुलोना साजन। सुना भाइयों क्या है, आपका भी क्या है, सुलोना साजन। हम सजनी है, वो हमारा साजन है। क्या करता है वो, हमारा ज्ञान से गुणों से श्रृंगार करता है। कितना श्रृंगार, क्या वंडरफुल नॉलेज है, वंडरफुल धारणा है। आप बताओ कितनी धारणा वंडरफुल है, आप एक एक धारणा देखो, कमाल की बाबा की धारणा। अगर बाबा ने तो कमाल ही कर दिया, ऐसी धारणा बदला मत लो, बदल कर दिखाओ, ना दुख दो ना दुख लो, कितनी धारणा है। हम पहले कर किसी को दुख मत दो, बाबा का दुख लो भी नहीं, कितनी ऐसी सी बातें हैं। तो क्या है, सलोना साजन है, श्रृंगार करता है, प्यार करता है, फीलिंग आनी चाहिए। और ज्ञान गुणों का श्रृंगार कर कहां ले जाएगा, बोलो बोलो बोलो, पिया घर ले जाएगा, फिर कहां भेजेगा, ससुर घर भेज देगा, आप खुद बैठ जाएगा वो परम धाम, जो परम धाम ले जाएगा पियर घर, और हमारा जो घर है ये सत्य गोल्डन एज में हम भेज देगा। तो सुलोना साजन है, देन सुप्रीम सर्जन है। नेक्स्ट, बहुत अनुभव आते हैं कि बाबा ने मेरा ऑपरेशन ऐसे किया जैसे खुद कर रहा हो, लाइट पड़ रही थी, ये पड़ रही थी, है बात उनके अंदर, इतनी इतनी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो क्या है, वो सुप्रीम सर्जन भी है, ज्ञान इंजेक्शन लगा के तन मन को निरोगी कर देता है। फेथ चाहिए वास्तव में, और क्या है, फेथफुल चाइल्ड। और सब बच्चे धोखा दे सकते हैं, बुढ़ापे में छोड़ भी देते हैं, परंतु बाबा हमारी उंगली पकड़ करके क्या करेगा, भव सागर पार लेकर के ले जाएगा। बच्चों में आजकल जब शरीर छोड़ते क्या करते हैं, बच्चा होता ना आगे लाइट लेके वो लेके लैंप चलता रहता है शमशान की तरफ, उसे क्या फायदा, आत्मा तो निकल गई। तो बाबा हमारी ज्योति को जगा करके परम धाम लेके भेजे जाए, ही इज अवर फेथफुल चाइल्ड। और मदद करते हैं हर वक्त जब मुश्किल हो, हम बता दें आप। और लास्ट कौन सा है, नवा संबंध, मोस्ट बिलविड माशूक। हमारी माशूक भी वही है, किसी में आंख नहीं डूबनी चाहिए, उसी एक में सत्यम है, शिवम है और सुंदर है। क्यों सत्यम है, वो शिवम है, कल्याणकारी है, सत्य है और अति सुंदर है। कभी वो अगली नहीं होता, वो तो शरीर तो खत्म हो जाएंगे, वो हमेशा सुंदर है। इन बातों को रिवाइज करना चाहिए, कितने बाबा से संबंध है, उसको उस वीएन को देखो, बाबा के साथ मैं चल रहा हूँ, बाबा मेरा बच्चा है, और उसको बुद्धि में, मन में शुद्ध संकल्प और बुद्धि में ये बुद्धि उसको देखे। योगा मीन्स कंसंट्रेशन, मीन मन में शुद्ध संकल्प, यही संकल्प और बुद्धि उसकी पिक्चर बनाए, तभी जो होगा हमारा कंसंट्रेशन होगी। इस प्रकार से योगा मीन शुद्ध संकल्पों को जमा करो, बार 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 बार, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, कर्म इंद्रियों का राजा हूं, ये सब बातें, स्वच्छ हूं, स्वस्थ हूं, सब बातें जो है आत्मा ने, जो बाबा ने जो बोला है आत्मा के बारे में, उसको गो ऑन। शुद्ध संकल्पों का फ्लो चाहिए, ये भी एक ही संकल्प है आत्मा के बारे में, हम एक ही बात में टिके हुए ना, वो फ्लो होता जाए होता जाए। बाबा को याद करो, घर को याद करो। और मैं सबसे बताऊं बात, जो सबसे अच्छी जो बाबा ने युक्ति बताई याद की, पांच स्वरूपों को बार बार रिवाइज करो, बेस्ट मेथड है। इसमें आत्मा भी आ गया, परमात्मा भी आ गया, घर भी आ गया, देवता भी आ गए, ब्राह्मण भी आ गया, पूज्य भी आ गया, सब बातें इन पांच स्वरूपों में आ जाती हैं। बाबा कहता दिन में आठ बार तो करो, करते होंगे आप आठ बार, नहीं करते तो करो। बाबा ने कहा सोने से पहले करके सोवो, अगर नहीं किया तो। हम तो कहते 80 बार करो, जब भी टाइम मिले इसी पांच स्वरूपों में टिके रहो, तो फिर आप इतना हल्के हो जाएंगे, इतना वो शक्ति भर जाएगी, जहां से भी पास करेंगे कहते फरिश्ता जा रहा है, ऐसी फीलिंग आती है, किसी को सुनाएंगे उसको असर पड़ेगा। ठीक है, इन पांच स्वरूपों को याद करो, याद का अभ्यास करो, ज्यादा याद को रमणीक बनाओ। बाबा रमणीक बनाते थे, देखो उस दिन बाबा मुरली में था, बच्चे देखो तुम बच्चे बैठे हो, अभी मैं बाबा भी बैठे, ब्रह्म बाबा, अभी आप सोच रहे होंगे शिव बाबा आएगा मुरली सुनाएगा, ये भी योग है। अभी एक मुरली में था, अब बताइए योग केवल बिंदु बन के बिंदु को देखो वो तो ठीक है, वो करना ही चाहिए, लेकिन कुछ भी शुद्ध संकल्प आप में रखते हैं वो भी एक योग का हिस्सा है। जितना हम याद करते जाएंगे व्यर्थ अतीत बन जाएंगे, स्वयं शुद्ध के कुछ है नहीं, क्योंकि शुद्ध संकल्पों से पॉजिटिव थॉट से पावर आती है और प्योरिटी आती है। सत्युग में क्या चाहिए? दो ताज चाहिए, क्राउन ऑफ लाइट प्योरिटी और क्राउन ऑफ माइट पावर, दोनों इस पॉजिटिव थॉट से आती हैं जो बाबा ने बताया। हम तो भाई वही छोटा मोटा पुरुषार्थ करते हैं, खुश रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सबकी हेल्प मदद करते हैं, सबको सहयोग देते हैं, सबकी दुआएं लेते हैं, कोई भी वो करते हैं उससे आगे जा रहे हैं। बहुत समय बीत गया, अब थोड़ा समय बाबा कहते साढ़े पंद बाकी रह गया, आवाज सत्यु की आवाज भी आ रही है, अब चलना है अपने घर, अब बहुत समय नहीं है। तो आप सभी से मिलने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई। ओम शांति, ओम शांति। मेरा नाम आत्म प्रकाश है, शायद यही जानते होंगे दूर के हैं, और मैं ये ज्ञान अमृत वर्ल्ड न्यूअल मैगजीन में परिचय नहीं दिया, मैं अपना दे रहा हूँ भाई।
ओम शांति। भाई जी को कौन नहीं जानता है, हा? आप हमारे वरिष्ठ भ्राता हैं, कौन नहीं जानता है, हाथ उठाइए, सभी जानते, देखो सिर्फ दो लोग नहीं जानते, सभी जानते हैं आपको, सब मधुबन में आते ना, सब पुराने भाई बहने हैं। सिकंदराबाद पहले दूसरा ग्रुप था, ये दूसरा ग्रुप है। तो आत्म प्रकाश भाई जी अपने ज्ञानामृत और वर्ल्ड रिन्यूअल के संपादक हैं, ज्ञानामृत प्रेस के प्रकाशक हैं, माना जो भी साहित्य अपना बनता है उसके प्रकाशक हैं आप, मीडिया विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और आपने क्लास से ही समझा कि आपने मम्मा बाबा की पालना ली है। 1961 में आप ज्ञान में आए, 57 में ज्ञान में आए, और आप अपने पूरे परिवार को ज्ञान में लाए। अभी जैसे आप अनुभवों में सुन रहे थे, तो कुरुक्षेत्र में आपके बड़े भाई हैं लक्ष्मण भाई, वो अभी सोनीपत में जो अपना रिट्रीट सेंटर बना है वहां पर रहते हैं और उसको पूरा संभालने में मदद करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने आपको दिल्ली में रखा, चित्रशाला बनाया, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली में चित्रशाला में बाबा ने रखा, जहां म्यूजियम प्रदर्शनी मेले के चित्र बनते रहे। फिर बाद में जगदीश भाई के साथ आप साहित्य विभाग में आ गए, और फिर 1992 में यहाँ शांतिवन में जब ज्ञानामृत प्रेस बना तो आप यहाँ शिफ्ट हुए, और बाबा की बेहद की सेवाओं में पूरी तरह से अथक सेवाधारी, बहुत ही जैसे बताया कि हम तो सबको सहयोग देते हैं तो बड़ों के आज्ञाकारी, यज्ञ के वफादार, बहुत ही सरल चित्र नम्र स्वभाव के हैं हमारे आत्म प्रकाश भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक हाथ की ताली से हम आपका धन्यवाद करें। हाँ, उर्मिला बहन दो शब्द बोलना चाहते हैं। भाई जी आप बैठिए।
ओम शांति। जैसे भाई जी का नाम है आत्म प्रकाश भाई, वैसे उन्होंने आत्म स्थिति का अभ्यास किया और सहयोग के बाद जो बताई, तो जब पुणे में जेपीओ सेंटर बना था तो उस समय म्यूजियम बनाने के निमित्त आप बने थे, और कई दिन हम उनके मतलब ज्यादा इसमें आए ताकि उनके और ज्यादा अनुभवों का लाभ मिला। बहुत अनुभवी आत्माएं हैं, और जो ये हमारा संगठन हुआ है सिकंदराबाद और पुणे का, तो जब लीला बहन की बात बताई तो लीला बहन पुणे में भी काफी समय रहे, क्योंकि उनके लौकिक परिवार वाले पुणे में रहते थे, उनके माता जी और बहन, तो हमने भी उनको बहुत नजदीक से देखा। तो ड्रामा अनुसार ऐसा ये संगम हो गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये पुणे जीपीओ के करीब 100 भाई बहने हैं और सिकंदराबाद के 108 भाई बहने, माने 160 की माला। तो ऐसे ये संगठन है बाबा का, और सभी को बहुत अच्छी पालना मिल रही है बड़े भाई बहनों के द्वारा, और हमारी सविता डॉक्टर बहन जो है वो बहुत अच्छी तरह से सबका परिचय देते हैं और सबसे बहुत प्यार से मिलते हैं। हमें सविता बहन ने बताया था कि योग वगैरह का आप ध्यान देना, तो हमने सोचा था कि जो दिन के समय होता है वो, लेकिन अमृत वेले का मालूम नहीं था, इसलिए कल हम और मंजू बहन जो है अमृत वेले योग कराएंगे। और जैसा भी बाबा की प्रेरणा होगी उसके अनुसार योग अभ्यास भी रहेगा। और आज तो जो शाम का क्लास है तो जितना हम भाई बहनों का लाभ लेंगे उतना अच्छा है। फंक्शन डांस वगैरह ये तो सब जगह होते रहते देखते रहते हैं। और अभी तो स्क्रीन इतने बड़े बड़े हो गए, आप कितना भी नजदीक बैठेंगे तभी टीचर बहने पहले बैठेंगी और जिनके संबंधी हैं वो पहले बैठेंगे। हम भी चाहेंगे ना मेहमान पहले बैठे, तो जहां भी जगह मिलेगी क्लास के बाद वहां पर सभी बैठ करके देखेंगे ही बाबा का प्रोग्राम और जो भी समर्पित का प्रोग्राम रहेगा। और आप सभी भाई बहने क्लास में पहुंच जाए। 4:45 से 5:45 तक यहाँ पर क्लास रहेगा, तो आप सभी समय पर पहुंचने का सहयोग करें ताकि समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्लास चाहिए ना, योग क्लास चाहिए क्या? नहीं जी, किसका क्लास है पूछ रहे साहब? करुणा भाई जी का क्लास है। तो बहुत बहुत थैंक्स हमारे आत्म भाई जी को।
हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा, हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने